ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणाललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। अनंत योनियों में भटकने के बाद जीव को मनुष्य का गर्भ प्राप्त होता है और बहुत सारी लाखों लाखों योनियां हैं। इतनी योनियां हमने कभी देखी भी नहीं होगी अभी इस जीवन में, लेकिन हम सब लोग उन सारी योनियों में गुजर चुके हैं और इतना सारा कष्ट भोगने के बाद में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी हर जन्म में यातना पीड़ा, ऐसा मत समझना कि आदि भौतिक कष्ट केवल मनुष्य को होते हैं। आदि भौतिक कष्ट जानवरों को भी होते हैं, आध्यात्मिक कष्ट जानवरों को होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे गाय को सब्जी खाने की इच्छा होती है, वो सब्जी वाले के ठेले में मुंह डालती है, फिर डंडा पड़ता है, फिर पीछे जाती है, फिर अपने ही वेग से वापस मुंह डालती है, वापस डंडा खाती है, आध्यात्मिक क्लेश है ना। और साथ साथ में ठेले वाले की तरफ से डंडा गिर रहा है, वो आदि भौतिक क्लेश है ना, कोई पकड़ के ले जा रहा है। वर्षा हो रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी लग रही है, धूप लग रही है, तो आदि भौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारे कष्ट हर योनि में लगे हुए हैं और हर योनि में सबसे अधिक भय होता है मनुष्य से अधिक। ये स्पेसिफिक फीचर है बाकी सब योनियों का कि हर जीवन में बहुत भयंकर भय होता है। खाना खा रहे तो दिख रहे हैं कौन आ रहा है मारने के लिए, एवरी मील हर एक जो भोजन है उसका जब भी खाने को बैठते हैं कुछ खाते हैं 50 बार देखते हैं घूम घूम के कोई आ तो नहीं रहा है। तो प्राणियों के जीवन में बहुत भयंकर भय का फियर इज मोस्ट प्रेडोमिनेंट पार्ट ऑफ द एनिमल लाइफ। सो ऐसे कष्ट भरे अनेक अनंत योनियों से गुजर के जीव को मनुष्य का गर्भ प्राप्त होता है ना। और ये गर्भ इतना इम्पोर्टेंट है मनुष्य का शरीर प्राप्त होना कि इसी के द्वारा वो 84 लक्ष योनि में जितना समय उसने बिताया है, जितना कष्ट भोगा है, उस कष्ट को पूर्ण विराम देने का एक मौका है उसके लिए, बस हो गया अभी, इसके आगे वो कष्ट नहीं होना चाहिए। ये कष्ट देने, कष्ट विराम करने का जो मौका है वो किसी भी अन्य योनि में नहीं है। शाम को हम लोग बात कर रहे थे आज बैठ के, होता ना सांप सीढ़ी का खेल, होता ना सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर, उसमें कैसा होता है, आप 92 तक पहुंचते हो तो अचानक सांप के मुंह में जाते हो, सीधा 8 में आते हो, तो 8 के बाद में क्या होता है बोलो, 8 के बाद में क्या होता है, आप 92 तक पहुंचे, सांप के मुंह में गए तो सीधा आपको नीचे 8 पे लेके आए हो, 8 के बाद में क्या होता है, वापस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपने ऐसा नहीं बोलना है कि मैं तो ऑलरेडी 92 में जा चुकी थी तो मुझे अभी डिस्काउंट मिलना चाहिए, जंप मार सकती हूँ क्या मैं 8 से 16, 16 से 24, 24 से 48, दोबारा आना पड़ेगा आपको, वैसे जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किधर भी आपका अगर पतन होता है तो वहाँ से पुनः आपको चालू करना पड़ेगा उसी सिक्वेंस में, कोई शॉर्टकट नहीं उसके अंदर मिलता है। और ऐसे कई अनंत गलतियां हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कई चक्र काट चुके हैं, तो मनुष्य जन्म में वो जो चक्र है उसको विराम करने का मौका मिलता है। इसलिए मनुष्य जीव को कभी भी गर्भपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गर्भ इतना महत्वपूर्ण है, इतना शरीर उसका इम्पोर्टेंट है कि वो शरीर के अंदर उसको भगवान को प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। ऐसा एक यंत्र मिलेगा उसको, ऐसी एक नौका मिलेगी जो भवसागर से उसको पार कर सकती है। बाकी कौन सी भी योनि में, अगर पक्षी का अंडा हो या किसी जानवर का गर्भ हो या किसी पक्षी का या किसी स्नेक का, कहीं भी जन्म, कोई भी शरीर योनि कोई मिलेगी आपको, तो उससे इससे बाहर पड़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ये जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साउथ अफ्रीकन काले लोगों का जन्म हो या अमेरिकन गोरे लोगों का जन्म हो या जैपनीज चपटे लोगों का जन्म हो या छोटे लोगों का हो या बड़े लोगों का हो या अमीर लोगों का हो या गरीब लोगों का हो, किसी भी टाइप का हो, कुरूप हो, सुंदर हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी टाइप का होगा, लेकिन अगर मनुष्य योनि होगा, जैसे हमारी वार्षिकवान हुई है ना, उसमें ब्रेन नहीं है, उसमें विजन नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है, उसमें सिटिंग एक्टिविटी नहीं है, टॉकिंग एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर मनुष्य शरीर है, ध्यान रखना इस बात का। कितना भी वो दोषपूर्ण क्यों न हो, लेकिन चूंकि वो मनुष्य का है इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमको लगता है कि उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर वो नहीं है, कभी कभी लगता है कि उसके अंदर फैसिलिटी है ही नहीं कुछ, बस दो हाथ दो पैर हैं, बाकी सब कुछ तो कुछ है ही नहीं, बाकी सब फैसिलिटी, सूक्ष्म फैसिलिटी कोई है ही नहीं, कोई बोल नहीं सकती है, कोई गा नहीं सकती है, कोई चल नहीं सकती है, कुछ काम नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती है, केवल खाना पीना और लैटरिन करना बस, और रोना फिट्स में, लेकिन फिर भी वो मनुष्य योनि है और वो महत्वपूर्ण है, उसका महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि इसी शरीर के एंड में वो भगवान के पास जा सकती है, ये सत्य कभी मिटता नहीं है। इसलिए कितना भी अपाइज हो, कितना भी बाय बर्थ एनामलीज हो उसके अंदर, होता है ना बहुत बार हार्ट में होल होता है ना VSD, पता है कि नहीं, इतना भी कुछ भी होने पर भी बालक को जन्म देना चाहिए। अभी अभी मैंने एक बालक को देखा था, माँ को देखा था, 6 महीने वाली माँ थी, 36 साल की उम्र की माँ और फर्स्ट प्रेगनेंसी, जस्ट मैरिड एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी 36 साल की उम्र में, और बालक के अंदर ब्रेन ही नहीं है उसको, एन की फैली, नो ब्रेन, आपको पता होगा वो उमेश ने देखा था। प्रश्न आया ना डॉक्टर के, बाकी डॉक्टर क्या बोलेंगे, अरे क्या है, एजेंट के पहले तो उसको गिरा दो, क्या करना है उसको, बच्चा जीने वाला नहीं है। लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग कैसा है कि बच्चा गर्भ में भी होगा ना तो मनुष्य का बच्चा है, वो कुत्ते का बच्चा नहीं है, पंछी का बच्चा नहीं है, मनुष्य के शरीर में उसका ब्रेन नहीं, लेकिन मनुष्य का शरीर है उसका, उसकी योनि मनुष्य के शरीर में बैठी हुई है। तो उतने समय में अगर वो गर्भ में भी मरेगा या गर्भ से बाहर निकल के 3-4 दिन के बाद में मरेगा, फिर भी वो मनुष्य शरीर का ही जीवन है उसका। उतने टाइम पे भी अगर उसको भगवान का, भक्तों का संग मिलता है गर्भ के अंदर भी, तो भी वो भगवान के धाम में जा सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम बोले क्या फायदा है उसको, कुछ समझता नहीं, कुछ नहीं, पेट के अंदर क्या है उसको मालूम, लेकिन माता जो सत्संग करेगी, उसका पूरा लाभ बालक को मिलेगा 100%। 2 महीना होगा उसके पास, 3 महीना होगा, 7 दिन होंगे, जो भी भगवान का, भक्तों का, भगवान के नाम का, भगवान के कथा का उसको संग मिलेगा, वो उसको तारेगा केवल मनुष्य जीवन में। ऐसा है, इसलिए माता को मैंने वही सलाह दिया, आपको क्या नुकसान है, क्या कुछ तकलीफ हो रही है आपको? नहीं हो रही। बच्चे को तकलीफ है क्या? कुछ तकलीफ नहीं, बच्चा अंदर जी रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसको जीने दो, जितना समय भगवान ने लिखा है उसके हिसाब में उसको जीने दो, उसमें इंटरफेयर मत करो। और क्या कर सकते हैं उसके लिए? भगवान का नाम लो, सत्संग में रहो, प्रसाद पाओ, पवित्र क्षेत्र में जाओ, संतों की सेवा करो, हाँ मंदिर में जाओ, प्रदक्षिणा करो, तुलसी की प्रदक्षिणा करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन में रहो, सारा 100% लाभ बालक को मिलेगा। तो आपने पूछा था ना क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना भक्तों का भगवान के विषय में संग करना चाहिए, सत्संग, सत विषय में किया हुआ संग। सत विषय यानी भगवान का विषय, सत विषय क्या होता है? भगवान का विषय, और कोई सत विषय नहीं होता है, सत विषय मीन्स भगवान का विषय, उसके विषय में संग करते रहना, ये बहुत जरूरी है। और इस कालावधि में जितना संग करेंगे उसका सबसे अधिक लाभ बालक होगा, क्योंकि बालक पूर्णतः आप पर निर्भर है, 100% डिपेंडेंट ऑन यू। बालक को चॉइस नहीं है, वो आपको बोलता नहीं मेरे को गार्डन में खेलने को जाने का, लेके जाओ गार्डन में, कोई चांस नहीं है। हाँ मेरे को वड़ा पाव खाने का है, मेरे को पिज्ज़ा खाने का है, पाव भाजी खाने का है, कोई चांस नहीं बोलने का, कोई चॉइस ही नहीं है बालक को। आपको गुस्सा आया तो माता जी गुस्सा मत करो, ऐसा बोलने का भी चॉइस नहीं उसको। हाँ जो भी है वो है, 100% उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपका गुस्सा, आपकी खुशी, आपका दुख, आपका आनंद, हाँ जो भी है, आप अमेरिका घूम रहे हो या भारत में घूम रहे हो या वृंदावन जा रहे हो, नासिक जा रहे हो, जो भी है वो भी उसके लिए एज इट इज अवेलेबल है, उसको कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी आध्यात्मिक उन्नति का कार्य करेंगे वो डायरेक्टली 100% उसको लाभ मिलेगा उसका। अभी कितना आप देते हो आपके हाथ में, उसको तो लेना ही है। आप मिर्ची खाएगा तो भी उसको लेना है, आप लड्डू खाएंगे तो भी उसको लेना है, अब भगवान का नाम लेंगे तो भी लेना है, और किसी की निंदा करेंगे तो भी उसको लेना है, उसको बस कोई चॉइस ही नहीं है। इसका मतलब जितना वो आपके ऊपर अधिक निर्भर है उतना आपसे वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट करता है। यू गॉट माय पॉइंट? जो भी आपके कॉन्शियसनेस में है वो डायरेक्टली उसको एज इट इज ट्रांसफर है उसके लिए। तो आपके हाथ में है पूरा, बच्चे का भवितव्य, बच्चे का व्यक्तित्व, उसका पर्सनैलिटी, उसका लाइफ का जो एटीट्यूड्स है वो सब आपके हाथ में है अभी फिलहाल। और जैसे बाहर आएगा ना तो धीरे 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 कम होता जाएगा, वो जितना बड़ा होगा उतना वो इंडिपेंडेंट होते जाएगा, फिर आपका वो नहीं मानेगा, नहीं करना है मुझे, मुझे अभी गार्डन में जाना है, मुझे अभी बिस्किट चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए, इसे बोलने लगेगा। तो आपका असर जो है वो कम 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 होते जाएगा, बहुत बड़ा हो गया तो 0 हो जाएगा एक टाइम पे, है ना। तो आज 100% है, एक समय पर 10-12 साल हो गए तो 0% हो जाएगा, फिर भी असर होते रहेगा लेकिन कम कम होते रहेगा, लेकिन आज वो आपके 100% हाथ में पूरा असर होने की स्थिति में है। इसलिए आपको सबसे पहले तो शांत और खुश रहने को सीखना चाहिए, इरिटेबल नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं है, सुविधा क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है लाइफ में, हाँ सासू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ऐसा क्यों बिहेव नहीं कर रही है, हाँ पति ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, आपको कोई चॉइस नहीं है, जो भी है वो है, उसी में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, शांत रहना है, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे तो बालक भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आप खुश रहेंगे बालक भी खुश रहेगा, उसकी बढ़त अच्छी होती रहेगी, और आप आध्यात्मिक भावना में रहेंगे तो बालक भी आध्यात्मिक भावना में रहेगा। जो भी बोलते ना बाढ़ कड़ू, हाँ जो भी आप उसको देंगे ना बूंद बूंद से वो स्वीकार करते रहेगा उसको, और उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। और एक तो मनुष्य का जीवन तो बहुत भाग्यवान है ही, लेकिन उसके आगे जाकर अगर भक्त के घर में आ रहा है वो तो परम भाग्य है उसका। चाहे हम लोग नए नए भक्त होंगे या इतने अच्छे भक्त भी नहीं होंगे, लेकिन अगर भक्त हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने का, जब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो परम भाग्यवान है बालक, क्योंकि अंदर रोता है वो। हाँ जैसे कि इन लोगों की अवस्था में 7 महीने में वो रोता है अंदर कि मैं कहाँ फंस गया, हाँ अंधेरी जगह में है, जो चेतना हमारी आपकी है वो चेतना उसके साथ मैंने में हो जाती है पूरी कंप्लीट फुल कॉन्शियसनेस। और ऐसे भी कहा गया है कि उसको भागवतम में दिया है कि उसको सारे जन्मों की याद आती है उसमें, जितना जन्म वो जी चुका है, जितना भोग लेने का प्रयास किया है, सब उसको याद आता है। और उसको ये अनुभूति भी होती है कि मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ, इतना सारा कष्ट भोगने पर भी मुझे समाधान नहीं प्राप्त हुआ, तो वापस माता के गर्भ में आ गया मैं। अभी इस बार मैं बिल्कुल गलती नहीं करूँगा, अभी मैं आकर बाहर भक्ति करूँगा भगवान की और वापस ये सब प्रयास नहीं करूँगा। ऐसे हर बालक, भक्त का बालक हो या और किसी का बालक हो, हर बालक अंदर प्रार्थना करता है, उसको अनुभूति मिलती है सातवें महीने में। लेकिन भक्त के माता के गर्भ में होना और बाकी के माता में गर्भ होना क्या अंतर है उसके अंदर, कि जैसी उसकी भावना होती है पश्चाताप की या भगवान के विषय में, उसको माता के भक्त होने से सपोर्ट मिलता है। तो माता को क्या कहना चाहिए, डोंट वरी, मैं आपको भगवान का भक्त बना के छोड़ूंगी। तो उससे क्या होगा, बच्चे को सुकून मिलेगा कि कम से कम मैं अभी जो सोच रहा हूँ उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई सपोर्ट मेरे लिए है। और बाकी माता लोग क्या करते हैं, जैसे ही बाहर आता है तो फिर उसको टीवी दिखाते हैं, खुद भी टीवी देखते हैं, फिर नॉनवेज खाते हैं, फिर और नॉनसेंस बातें करते रहते हैं, दुनियादारी की गॉसिप करते रहते हैं, शादी में जाते हैं, मुंजे में जाते हैं, एंगेजमेंट में जाते हैं, सब जगह पर दुनिया भर की बातें करते हैं। और जैसे बाहर आता है उसको ये मामा ये काका सबकी पहचान करके देते हैं और पूरा वो भूल जाता है पूरा अंदर उसने क्या प्रार्थना किया था। लेकिन भक्त के घर में जन्म लेगा तो जन्म लेते ही भगवान का नाम सुनेगा, कीर्तन सुनेगा, भगवान के नाम का जप सुनेगा, तो उसका कंटिन्यू हो जाएगा, उसको याद जो अंदर आई थी ना वो बनी रहेगी उसकी याद। क्योंकि जन्म ऐसी घटना है कि जन्म होते हुए बालक को बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है और जो भी उस सोच कर रखा था सब भूल जाता है, वो इतनी पीड़ा होती है उसको। जन्म और मृत्यु का यही एक स्वभाव है कि जो भी आप सोच कर रखते हो ना सब भूल जाते हैं उसके बाद में, कुछ याद नहीं रहता है। अगर कोई याद नहीं करेगा तो आपको अपने आप याद नहीं आएगा वो, है ना। कभी कभी कहते हैं बहुत बड़ा हादसा होता है ना किसी का, किसी के घर में माता पिता बच्चे सबके एक साथ में डेथ होती है और एक ही आदमी बचता है, तो वो शौक से वो बहुत सारा चीज़ भूल जाता है पहले का, उसको कुछ याद नहीं रहता है उसको, कंप्लीट फॉरगॉटन, क्योंकि वो बड़ा सबसे बड़ा शौक है, इमोशनल शौक। तो बर्थ भी उसी जैसा है, वो इतनी पीड़ा होती है जीव को तो वो जो भी गर्भ में सोच रहा था सब भूल जाता है वो। तो ये आपका कर्तव्य है कि जब वो आएगा तो तुरंत पहले उसके कान में हरे कृष्णा बोलना है, भगवान की याद दिलानी है, और वही करना है उसके आगे, उसको याद दिलाते रहना है, डोंट फॉरगेट माई चाइल्ड, जो आपने सोच के रखा था वो आपको भूलना नहीं है, मैं बैठी हूँ यहाँ पर आपको याद करने के लिए, आपको करना है वो। और मेरे गर्भ में आए हो, दोबारा आपको किसी माता के गर्भ में जाना नहीं है, ये भी आपको बोलना है उसको, गर्भ में बोलना है रोज कि ये आखिरी गर्भाशय आपका है, लास्ट वूम, नो नेक्स्ट वूम फॉर यू, इसके बाद में और किसी माता के गर्भ में आपको प्रवेश नहीं करना है, मनुष्य के हो और किसी के हो, यू आर नॉट गोइंग टू गो इन एनी अदर वूम आफ्टर दिस, ऐसे आपको वादा करना है उसको, बार बार बताना है, याद दिलाना है, गलती से भी वापस नहीं आना है, ऐसे कोई मिस्टेक नहीं करने जिसके बारे में वापस आओगे इसके अंदर। तो सबसे बड़ा जो आसान तरीका है वो भगवान का चिंतन है। हाँ, भगवान का चिंतन हमारे लिए भी माता होने के टाइम पे और उसके लिए भी गर्भ होने के टाइम पे, दोनों के लिए आवश्यक है। अगर कुछ एक चीज़ आपको करनी है, आपको बहुत कुछ करने का समय भी नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है, इतनी सुविधा भी नहीं है आपके पास, तो एक चीज़ करनी होगी तो भगवान के नाम का स्मरण करना है बस। सबसे अगर आपको ज़्यादा कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा, आपको बहुत सारा हाई फाई बुद्धि नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि भगवान आपको बुद्धि को देखते हुए आपके पास लेते नहीं है, अपने पास भगवान को, आपकी भगवान को उनकी स्मृति कितनी है वो देख के आपको लेते हैं आपके पास। बोलते नहीं कि आप तो MBBS नहीं थे, अरे आप तो MD नहीं थे, हाँ ऐसे कुछ बोलते नहीं वो, अरे आप तो प्राइम मिनिस्टर नहीं इंडिया के थे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। कितनी भी आप गरीब अवस्था में होंगे, कितनी भी असुविधा की अवस्था में होंगे या कष्ट में होंगे, कुछ भी होगा, भगवान की स्मृति रहेगी तो आपका भी कल्याण है और बालक का भी कल्याण है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो इसलिए इस अवस्था के हर पल का आपको लाभ लेना चाहिए, जितना हो सके उतना पति लोगों का कर्तव्य है कि गर्भवती माता को संतुष्ट रखें, समाधि में रखें, आनंद में रखें, खुशी में रखें, उनकी पसंद की बातें कहें, उनकी पसंद की चीज़ें करें, क्योंकि वो उनके लिए केवल नहीं है वो, क्योंकि वो जब प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी, तो बालक का जो आध्यात्मिक उन्नति है वो बैलेंस रहेगा, अच्छी तरह से होता रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये सब लोगों को पता होना चाहिए। घर में जितने सासू है या और भी जितने लोग घर में रहते हैं, उनको सब पता होना चाहिए कि गर्भवती माता को कभी भी मानसिक कष्ट नहीं देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि न हो। बाकी दुनिया में रहते हो तो कष्ट होता ही है, लेकिन जितना हो सके उतना कम से कम घर के लोगों की तरफ से वो कष्ट होते हुए भी, अभी जो आपको पीठ का दर्द हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, वो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन कम से कम कोई प्रेम से पुकारने वाला है, पूछने वाला है, कोई पीठ पे हाथ रख के आपको सांत्वना करने वाला है, तो आपको अच्छा लगेगा ना। दर्द होते हुए आपको लगेगा ठीक है कोई बात नहीं, इतना पति मेरा लविंग है तो कोई तकलीफ नहीं, मुझे कष्ट मुझे हो रहा है लेकिन फिर भी माय हस्बैंड इज़ वेरी लविंग, मेरी सासू बूढ़ी माँ माँ जैसी है, मेरे सासरे भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा उसका, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। और ऐसी भावना में रहेंगे तो आपके बालक की जो मानसिक और भावनिक जो वृद्धि है बहुत अच्छी तरह से होगी। हमको एक सक्षम और संतुलित बालक को जन्म देना है जो मानसिक दृष्टि से संतुलित होगा, एक्सेंट्रिक नहीं होगा, मतलब एक कल्ली नहीं होगा कि उसका कोई गुस्सा ही आता है उसको हमेशा, या उसको हमेशा दुखी ही रहता है, या हमेशा वो उस पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है किस चीज़ का, तो हो गया असंतुलित, है ना। उनको संतुलित बालक को जन्म देना है और वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। जो जो भावनाओं से आप गुजरेंगे वो सारी भावनाएं बच्चे के अंदर प्रवेश करेगी। समझो आपको कुछ समय में लगा होगा कि कोई देखता नहीं मुझे, एकदम इनसिक्योर फील होगा आपको समझो, हाँ, तो वो भी उसके अंदर चला जाएगा। अगर आपको लगेगा कि कितना कष्ट है, कोई देखता ही नहीं मुझे, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, कितना काम में कष्ट हो रहा है, घर पे कष्ट हो रहा है, तो वो सारी भावना उसके अंदर प्रवेश करेगी। या बड़े खुश रहेंगे आप, जो आपकी मन की इच्छा है वैसे पूरी होती हो रही है, तो वो खुशी की भावना भी बच्चे के अंदर प्रवेश करेगी एज इट इज 100%। सो ट्राई योर बेस्ट, हाँ, कि आप संतुष्ट रहें, जो भगवान ने जैसे रखा है आपको उसमें आप संतुष्ट रहें, और भगवान की प्रार्थना करते रहें कि मुझे आपको धन्यवाद करने का भाव मिलना चाहिए। और जो भी आपको बालक के अंदर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, वह बालक को कहो कि आप सत्यवादी हो, आप बुद्धिमान हो, आप धैर्यशाली हो, आप ज्ञान क्या कहते हैं ज्ञानी हो, आप भक्त हो, आप सबके मददगार हो, आप वैष्णवों के सेवक हो, ये सब बालक को बोलते रहना चाहिए, तो बालक उस भावना को स्वीकार करता है। अभी अभी मैंने एक सेमिनार में गया था, तो सेमिनार को जो था ना ट्रेनर बता रहा था कि जब मैं 3 साल का था तो मेरी माता ने मुझे कहा कि यू डोंट हैव मैकेनिकल स्किल्स, पिताजी का मैकेनिकल गैरेज था, लेकिन माता ने बालक को कहा कि आपको मैकेनिकल स्किल नहीं है। फिर 5 साल के बाद भी वही बताया कि आपको मैकेनिकल स्किल नहीं है, इसलिए वो बालक कभी मैकेनिकल स्किल पिकअप नहीं कर पाया। उसको कहते हैं सजेस्टिव इंस्ट्रक्शन, मतलब इतना स्ट्रांग सजेशन दिया उसको कि उसी को वो सत्य मान बैठा। बच्चे का मन कैसा बहुत कोमल होता है, आप बच्चे को बोलते रहोगे ना आप बुद्धू हो बुद्धू हो बुद्धू हो, तो वो बुद्धू बन जाता है, इट्स अ फैक्ट, बिकॉज उसका इतना आपने क्या कहते हैं हिप्नोटाइज कंडीशनिंग कर दिया है कि उसको बुद्धि होते हुए लगेगा कि मैं बुद्धि नहीं, मुझे ऐसा लगेगा उसको। तो वो 65 ईयर्स का आदमी है, वो आज भी बोलता है कि माता ने मुझे ऐसे बताया इसलिए मैं मैकेनिक लाइन में जा नहीं पाया मैं। और माता बोली कि और एक कथा ऐसी है कि एक अमेरिकन माता थी जो अपने बालक को उसको आर्मी में इंचार्ज बनाना था, लेफ्टिनेंट क्या होता ना पोजीशन, तो उसको बचपन से गर्भ से उसको वही सुनाया कि तुम आर्मी के प्रमुख अधिकारी हो, आर्मी के प्रमुख अधिकारी हो, गर्भावस्था में 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में 8वें महीने 9 महीने में बालक होने के बाद में फिर नर्सरी में फिर स्कूल में रेंगते हुए खेलते हुए एक ही बताया कि तुमको लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है आर्मी में। तो 21 साल में वो आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया, तो इतना ठोक ठोक के उसको बताया गया था ना मन में भावना के स्तर पर, इमोशनली ही वॉज ड्रिल्ड कि आपको आर्मी का अधिकारी बनना है। वैसे हम लोग अगर अपने बालक को ड्रिल करेंगे कि आपको भक्त बनना है, वैष्णवों का सेवक बनना है, बस तो बनेगा वो 100%। जैसे हमारे श्रीवास ठाकुर प्रभु ना, वो कैसे करते हैं, कहीं से घुमा फिरा के बालकों को भक्तों की सेवा करने को लगा देते हैं। अभी वो इतने ट्रेंड हो गए कि आज 8:15 बजे श्रीराम जा रहा था, मैं वहाँ से लेक्चर से आ रहा था जिम जाने के लिए, वो यहाँ से, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले बुधवार के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, बोले खत्म होने को आया, नहीं बोले सेवा है ना, लेट हो गया तो भी वो प्रसाद सर्विस करने को जा रहा है उधर, क्योंकि अभी उसके दिमाग के सॉफ्टवेयर में वो फिट हो गया है कि उसको वैष्णव की सेवा करनी है, बस सिंपल। तो किसने सिखाया उसको ये? माँ बाप ने सिखाया, ट्रेन किया उसको पूरा, तभी उसके उसके आदत में आ गया वो, पहले बुद्धि में था, विचार में था, अभी उसके आदत में आ गया, अभी उसके बिना वो रुक नहीं सकता है। और क्या सिखाया है? हर बर्थडे को गिफ्ट लेने के बदले में सब वैष्णवों को गिफ्ट देना चाहिए, तो इतने से उम्र में सिखाया उनको। तो बर्थडे के पहले दिन मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, रात भर बैठ के उसको सब कुछ एकदम स्टाइल में पैक करते हैं, और बर्थडे के दिन सुबह शाम तक सबके घर भर जाके उनको देते रहते हैं सीनियर डिवोटीज को। कितने से बचे। और माता ने क्या बताया कि हमेशा अपने पास जो भी कुछ है वो दूसरों को शेयर करना चाहिए। तो उनका एक चॉकलेट होगा ना, और दूसरे बालक ने पूछा कैन आई हैव इट, तो तुरंत निकल के देगा उसको, उसको एक ही है, उसको खुद के लिए दिया गया था, लेकिन किसी ने मांगा तो तुरंत दे देगा उसको, क्योंकि उसको बताया गया है कि ऑलवेज गिव टू अदर्स, कीप योर सेल्फ लास्ट। तो इतना बालक भी अभी उस मूड में है शेयर करने के, मतलब देने के, सेक्रीफाइस करने के मूड में है, क्योंकि उसको बताया गया है बार बार दिस इज गुड फॉर यू। एक बार गिरिराज प्रभु ने उनका गिरधारी बहुत छोटा था, तो गिरिराज प्रभु वैष्णवों का महानता बता रहे थे कि वैष्णव कितने महान होते हैं। तो छोटे बालक ने पूछा उनको कि पापा आप वैष्णव के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ कुछ भी कर सकता हूँ, डाई भी कर सकते हो, यू कैन डाई ऑल्सो, हाँ आई विल डाई ऑल्सो फॉर वैष्णव। समझ गए, मतलब वो क्या देखते हैं कि व्हाट इज माय फादर्स मूड, फादर इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर वैष्णवस। तो समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए अल्टीमेटली क्या है, माता और पिता फर्स्ट हीरो है उसके लाइफ में। माता पिता क्या बोलते हैं उसके, अच्छा माता पिता क्या करते हैं वो ज़्यादा उसको इम्प्रेस करता है। कितना उपदेश करेंगे, 100 बार बोलेंगे, 100 लाइन बोलेंगे, तो इतना इंप्रेशन नहीं होगा उसके ऊपर। एक आप एक्टिविटी करोगे उसका 100% उसके ऊपर अफेक्ट होगा। तो देखता है माता पिता भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भक्तों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, भक्तों के लिए हमेशा बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उनके बारे में, प्लानिंग करते रहते हैं, उनको घर में बुलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको क्या क्या करते रहते हैं, तो देख रहे हैं उसका डायरेक्ट परिणाम बच्चों पर होता है 100%। तो हमको हमारे बालक को क्या बनाना है ये पहले से मन में तैयार होना चाहिए कि आपको कैसा होना चाहिए। मैं कैसे नहीं थी, मेरे को बालक को कैसे होना है, ये आपको तो तय करना है पहले से, और एकदम प्लान करके बच्चे के दिमाग में ड्रिल करना है उसको, फिर वो वैसे ही बनेगा। जैसे आपके पास में ढांचा है, समझो आपके पास कोई क्ले है, हाँ, और ये ढांचा है, तो उसमें फिट करेंगे तो कैसा उसका आकार का निकलेगा ना वो क्ले, फिर आप दूसरा लगेंगे तो दूसरा दबाएंगे तो दूसरा निकलेगा उसका। ढांचा जो है ना वो केवल जो कोमल मट्टी होती है ना उसी को आकार दे सकता है। अगर कोई पत्थर का आपने कोई आकार ला के दिया तो ढांचे में आके वो आकार बदली नहीं होगा उसका, ऑलरेडी हो चुका है उसका आकार। तो आकार आपको देना है, और क्या आकार देना है वो आपको पहले से तय करना पड़ेगा। एग्जाम में कैसे जो पहले पढ़ा होता है ना वही याद आता है, वही लिखते एग्जाम के अंदर, तो लास्ट डे में जो पढ़ते हो वो याद नहीं आता है बाद में एंड में। वैसे ही आपको बालक को क्या बनाना है वो जन्म होने के बाद सोचना नहीं है, पहले से प्लानिंग करना है आपको, क्योंकि जन्म होने के बाद बहुत सारा काम भी तो बैठे आराम से कथा सुन रहे हैं, बाद में कथा सुनने को टाइम नहीं मिलेगा आपको। दिन भर शीशो टैटू खाना पीना दूध, रात को जगना, 3 बार 5 बार उठना, क्या चल रहा है लाइफ में समझता नहीं। 3-4 महीने ऐसे गुजरेंगे आपको कुछ सोचने को टाइम नहीं, ना खाने को टाइम, ना सोने को टाइम, ना कुछ करने को टाइम, ऐसे आपका फुल टाइम आप 24 आवर्स बिजी हो जाओगे। तो उसमें क्या आप प्लानिंग करोगे? प्लानिंग पहले करना है आपको कि मैं जब बालक को दूध पिलाऊंगी तो कौन सा म्यूजिक ऑन होना चाहिए, वो पहले अभी तैयार करके रखो, ताकि मैं जब बालक को बिजी होके भी दूध पिलाऊंगी ना तो अपने आप चलता रहेगा म्यूजिक, उसका प्लानिंग अभी करो। मैं जहाँ सोऊंगी वहाँ पर कीर्तन का स्पीकर है क्या, पहले प्लान करके रखो, बाद में प्लान करने को टाइम किधर है। आप भी भागते रहेंगे और वो भी भागती रहेगी उसके पीछे, अरे अभी 15 लंगोट लाए थे अभी कम पड़ेगा 10 और लेके आओ, उसी के पीछे भागते रहेंगे आप, है ना। नो टाइम, टाइम इज नाउ। सोचना, मेडिटेट करना, प्रार्थना करना, प्लान करना, सब आपका अभी टाइम है, तब जाकर आपका आपको जो प्लानिंग किया है वो आपको होते हुए नजर आएगा। तब प्लानिंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब बिजी हो जाएंगे उस समय। ये बहुत ज़रूरी है। और एक बालक को जन्म देना बहुत आसान चीज़ है, मतलब इससे एनिमल्स गिव बर्थ, लेकिन उसको एक भक्त बना के परवरिश करना ना बहुत मुश्किल है। उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाकर भगवान के पास पहुंचाना बहुत मुश्किल बात है, और वो हमारा चैलेंज है, क्योंकि हमने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया है और हमने सोच के रखा है कि हमको जाना है भगवान के पास। तो हमारे साथ जो भी रहेंगे, हमारे पर जो भी निर्भर रहेंगे, वो सबको हम भगवान के पास लेके जाएंगे हमारे साथ में। गुरु महाराज की धोती पकड़ेंगे, लटकेंगे उसके ऊपर, सबको हमारे पर लटकाएंगे, लेकिन सबको लेके जाएंगे, किसी को पीछे छोड़ेंगे नहीं। जो पीछे पीछे होता होगा, कोई बचता होगा, उसको भी खींच के लेके जाएंगे। सबसे ज़्यादा हमारे पर जो निर्भर है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई बोलता है कि मैं तुम्हारा हूँ, आई एम योर्स, तो भगवान भी उसको नहीं भूलते हैं। एक बार आपने बोल दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान आपको बोलते नहीं हैं। उसी तरह से हमको भी अगर किसी ने कहा कि आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, तो वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव शेल्टर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बालक अभी तुम्हारे ऊपर पूर्णता से, उसको बोलने की जरूरत नहीं, फुल टाइम इज ऑन यू, आपके ऊपर ही निर्भर है वो। आपको पूरा जिम्मेदारी के लेना है, खाने पीने का, रहने का, बात करने का तरीका, सब कुछ जो भी आप करेंगे वैसा ही उसका होगा कल्टीवेशन। जो लैंग्वेज आप बोलेंगे वो लैंग्वेज बाद में बोलेगा वो, सेम जिस तरह से बोलेंगे वैसा ही बोलेगा। इसलिए आप लोगों को सोच समझ के अच्छी तरह से रहना चाहिए। बालक सोता भी रहेगा ना जन्म के बाद में, अभी आप पेट में सो रहा है, बाद में बाहर सोएगा, फिर भी आपके द्वारा जो भी वातावरण निर्मित होगी, वातावरण का पूरा परिणाम उस पर होगा। यू टू अंडरस्टैंड, क्या आप वातावरण घर पे तैयार कर रहे हो, किस तरह का कल्चर आपका है, वो सारा वातावरण का परिणाम बालक की चेतना पर होगा। और आप बोलेंगे ये कहाँ से सीखा हो, उसका रूट आप में रहेगा, याद रखना। कौन सी लैंग्वेज कैसे भाषा में कैसे बोलता है, वो सब कुछ आपके ही द्वारा उसको सिखाया जाएगा। इसलिए ये कालावधि जो है, एक माता बनना, एक पिता बनना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, खास करके भक्त माता पिताओं के लिए। क्योंकि भौतिक दुनिया के प्रभाव से, तीन गुणों के प्रभाव से उसको मुक्त कराना और भगवान के चरणों में रखना बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी कहाँ मुक्त है अभी तक, लेकिन करना तो आपको है ही, वो खुद के साथ साथ बालक को भी भगवान के चरणों में रखना है। ठाकुर भक्तिविनोद क्या कहते हैं कि जब मैं काम से लौट के घर पे आता हूँ और देखता हूँ मेरे घर के सब लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर रहा हूँ। गृहेति गोलोको भाय, जब मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब ठाकुर जी की सेवा में मग्न हैं, लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है मैं घर में नहीं आ रहा हूँ, मैं गोलोक में प्रवेश कर रहा हूँ। वातावरण किसने निर्माण किया, भक्तिविनोद ठाकुर ने निर्माण किया, सब फैसिलिटी दिया ना, भगवान का मंदिर बनाया, भगवान के विग्रह लाए, सब फैसिलिटी दिया, घंटी लाई, आरती लाया, घी लाया, और सब बताया ऐसे करना है वैसे करना है, और फिर वो हो रहा है, अभी मशीन चालू हो गया, वो अभी हो रहा है, तो देख रहे हैं, देखो इट इज़ गॉड्स मर्सी कि ये हो रहा है और मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। अब मुझे प्रसाद मिल रहा है, ठाकुर जी को अर्पण किया जा रहा है, जो भी मेरा है सब उनको अर्पण करके फिर मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। अभी करना किसको है, लेकिन हमको ही करना है उसको। इसलिए अपने बालकों को चैरिटेबल होना, हाँ, उनको दान धर्म करने के लिए सिखाना चाहिए, उनको मैत्री करने को सिखाना चाहिए लोगों से, और शेयर करने को सिखाना चाहिए, सेक्रीफाइस करने को सिखाना चाहिए दूसरों के लिए, वैष्णवों की सेवा करने को सिखाना चाहिए, नम्र बनने को सिखाना चाहिए। हाँ, कितने सारे गुण हैं। तो ये सब अभी आपको सब लोगों को मिलकर प्लानिंग करना है कि हमारे घर में जो नया जीव मनुष्य शरीर धारण करके आने वाला है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या मैं करना चाहूँगी और किस किस रूप में मेरे बालक को मैं देखना चाहूँगी, कौन से गुणों के साथ देखना चाहूँगी, कैसे कैसे जीवन के संघर्ष को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ मैं, ये आपको प्लानिंग करना है पहले से। बाकी डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि और क्या बनेगा, वो तो एक तकदीर की बात है, वो जैसे उसका भाग्य लिखा है वो उसको मिलेगा। हाँ, अगर आप डॉक्टर हो दोनों, तो वो शायद इंजीनियर बन सकता है या और कोई बन सकता है, या तो पायलट बन सकता है, वो तो आपके हाथ में नहीं, जो उसका कर्म है वैसा वो बनेगा, लेकिन उसकी चेतना आपके हाथ में है, उसकी चेतना की जो यात्रा है ना, वो पूरी आपके हाथ में है। वो कुछ अभी तय नहीं है, वो आपको बनाना है। बाकी तो संचित वो लेके आ रहा है, उसके जो कर्म है उसको क्या करना है, उसके आगे जीवन में उसको दुख मिलेगा सुख मिलेगा कि रोग होगा कि नहीं होगा, वो सब उसका ऑलरेडी निश्चित होगा। लेकिन स्पिरिचुअली भगवान की भक्ति के विषय में सब आपको बनाना है, उसका भाग्य आपको बनाना है। भौतिक भाग्य उसको बनकर लेके आएगा वो अपने आप, लेकिन स्पिरिचुअल भाग्य उसका आपको बनाना है, या आपकी जिम्मेदारी है, याद रखना। नहीं तो कुत्ता बिल्ली बच्चे को जन्म देते हैं, वो बच्चे का स्पिरिचुअल भाग्य नहीं बनाते हैं, वो खाली खाना पीना खिलाते हैं और छोड़ देते हैं उनको, बाद में भूल जाते हैं कौन उसका बच्चा था और कौन क्या था, बच्चा भूल जाता कौन मेरी माता थी, कुछ समय का रिश्ता होता है वो, इसलिए उसको जानवर कहते हैं। हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, भगवान के भक्त होने का चांस हमारे लिए है ना। एनीवेज सो आज का कार्यक्रम जो किसके लिए है कि अंदर प्रार्थना करते हुए जीव को भगवान की कथा से उसका पोषण करना है, क्योंकि तो भगवान की जो कथा है वो कितना भी कष्ट होता है ना जीव को उसको नष्ट कर सकता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियाँ गाती है भगवान की गौरव में कि आपका चरित्र जो है केवल उसका श्रवण और कीर्तन करने से हमारा तपता हुआ जीवन जो है उसका सब कष्ट जो है मिट जाता है। तो अंदर जीव कष्ट में है, आपको भी अभी थोड़ा कष्ट है, हाँ इतना सा वजन लेके घूमना है, तो दोनों के लिए उसके कष्ट को नष्ट करने के लिए भगवान की कथा जो है वो अमृत जैसी है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, भगवत कथामृत, भगवतामृत कहते हैं उसको। क्योंकि अमृत क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र से आपको बचाने वाला है, इसलिए वो अमृत है। जन्म मृत्यु चक्र से आपको और आपके बालक को दोनों को बचाने वाला है, इसलिए खास करके सातवें महीने में भगवान की कथा का श्रवण करने का विधान बताया गया है कि एकाग्र होकर माता को फ्रेश रहते हुए भगवान की कथा पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो भगवान की कथा जो है वो तारक कथा है, भगवान आते हैं इसलिए और लीला करते हैं इसलिए कि हम लोगों को सुनने का मौका मिले, हम लोगों को कहने का मौका मिले, लोग चिंतन करने का मौका मिले, उनको याद करने का मौका मिले। हाँ, और जो हम लोग सुनते हैं उसका चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आपने वो धुंधकारी कथा सुनी है क्या, धुंधकारी की कथा सुनी है, भागवत महात्म्य की कथा, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसको धुंधुली नाम की पत्नी थी जो बहुत अच्छे चरित्र की नहीं थी, और आत्मदेव को बहुत साल तक बालक नहीं हुआ था, तो उसको बहुत इच्छा थी कि बालक हो जाए, लेकिन धुंधुली को बिल्कुल भी प्रेग्नेंट होके कष्ट सहने की इच्छा नहीं थी। ऐसा भी होता है, आज ज़्यादा होता है दुनिया में, कल कम था पहले, लेकिन उसको लगता है क्या प्रेग्नेंट होने का है कि जन्म देना है बढ़ाने का है, कौन करेगा कष्ट इतना। लेकिन पिताजी को बहुत, हस्बैंड को बहुत इच्छा थी, तो बहुत देर तक उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो साधु के पास गया, साधु ने कुंडली देखा, बोला आपके भाग्य में तो बालक है ही नहीं। फिर जिद किया उसने कि आप साधु हो, आपके अंदर शक्ति है कृपा है, तो आप मुझे बालक दे दो। तो उसने एक फल दिया उसको, बोला अपनी पत्नी को खिलाओ फिर उसको बालक हो जाएगा। अभी पत्नी बहुत होशियार होती है, उसको बालक नहीं चाहिए था, तो वो क्या करती है, पति को फंसा कर वो फल को गाय को खिलाती है, घर के गाय को, और पति को दिखना चाहिए ना कि प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको पता था कि फल खाएगा तो गर्भवती हो जाएगी, तो अपने सिस्टर को बुलाती है और कहती है कि तू जब होगी ना डिलीवर होगी ना, तेरा बालक मैं मेरा बालक करके पति को दिखाऊंगी कि ये मेरा बालक है, और अभी मैं गर्भवती होने का नाटक करूंगी, पेट पर कुछ बना के ऐसे बढ़ते हुए आइस आइस का बनाऊंगी और उसको दिखाऊंगी कि मैं गर्भवती हूँ, क्योंकि वैसे भी गर्भवती समस्या, गर्भवती के टाइम पे कोई संबंध नहीं होता है पुरुष स्त्री का, तो कोई पति के पास आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो पति का देखेगा कैसे कि पेट में बालक है कि नहीं है, वो देखेगा पेट बड़ा है तो वो होगा बालक उसके अंदर। तो वो फल खाने का नाटक करती है लेकिन देती है गाय को, और अपने सिस्टर के बालक को पुत्र के रूप में प्रस्तुत करती है कि आपका बालक है। एक ही साथ में उसके सिस्टर का बालक का जन्म होता है और गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक जन्म लेता है, क्योंकि वो फल जो था ना वो मनुष्य के बालक जन्म के लिए दिया गया था, तो गाय का गर्भ का आशीर्वाद लेने पर भी मनुष्य का बालक जन्म लेता है, जिसके कान गाय के जैसे होते हैं, इसका नाम क्या पड़ा? गोकर्ण। तो दुंदुली ने क्या कहा कि मेरे बालक जो है उसका नाम दुंदकारी होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा अर्थ नहीं उसका। जिद करती है तो उसको दुंदकारी नाम रखते हैं। उसकी मति वैसे भ्रष्ट थी पहले से ही, तो उसका बालक बहुत पापी बना जो वो बालक था, और जो गाय के गर्भ से आया था वो बहुत साधु बना, वो संतों की सेवा, भगवान का भजन, कोई दुराचार नहीं, कुछ नहीं। जितना सदाचारी वो उतना दुराचारी ये, दोनों बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में जो गोकर्ण था वो साधु बन गया, भक्त बन गया भगवान का, और ये चारों नियम तोड़ के जितने पाप दुनिया के थे वो सब करने लगा। इतना पाप कि बाद में बड़ा हो गया ना शरीर से, वो जवान हो गया, तो फिर स्त्रियों का संग करना, वेश्याओं का संग करना भी चालू किया उसने, शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना, मांसाहार, सब गंदा काम शुरू किया उसने। तो पिताजी का इतना अपमान किया उसने, बोला मेरा हिस्सा दे दो मुझे, तो पिताजी इतने परेशान होकर दे दिया उसको। तो वो सब उसने उड़ा दिया पैसा, और बाद में दूसरे बालक को बता दे रहे पिताजी कि क्या करूं मैं अभी। तो गोकर्ण ने कहा पिताजी को, तुम चले जाओ अभी, यहाँ मत रहो इस बालक के पास, आप तीर्थ यात्रा में चले जाओ, वानप्रस्थ लेकर चले जाओ, क्योंकि अभी आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। जैसे ही बालक पिताजी घर पे चले गए तो वो 5 वेश्याओं को लेकर घर पे आता है, और वेश्या भी कैसी, तो रोज अलग अलग डिमांड है उनके, तो संतुष्ट करने के लिए भी चोरी, डकैती, खून खराबा चालू करता है वो, फिर भी संतुष्ट नहीं होती वो। तो एक दिन 5 स्त्रियां वेश्याएं मिलकर दुंदकारी का गला दबाकर वध कर देती, खून कर देते, सारी प्रॉपर्टी एक साथ हड़पने के लिए। तो वो भूत बन जाता है, अकाली मृत्यु हो गया ना उसका, तो वो भूत बन जाता है। तब गोकर्ण अपने घर पे आता है, तो गोकर्ण भक्त है ना, इसलिए उसको जाकर वो भूत पुकारता है कि भैया मुझे बचाओ, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरी ये भयंकर अवस्था हो गई, मुझे बचाओ, प्लीज सेव मी। तब गोकर्ण जाके साधुओं से सलाह करता है कि मेरा भाई मुझे ऐसे ऐसे पुकार रहा है, उसका मर्डर हो गया था कुछ दिन पहले, अभी वो ऐसे ऐसे रूप में आके मुझे पुकारता है, मुझे क्या करना चाहिए। संत लोग कहते हैं कि भागवत का पाठ करना चाहिए, पूरा भागवत पारायण करना चाहिए, ठीक है। अपने भैया के प्रेम की वजह से वो भागवत का पारायण करता है 7 दिन, तभी एक बाम्बू के डलिया के अंदर जाकर वो आत्मा जो है, भूत आत्मा जो है, वहाँ पर जाके बैठता है कथा सुनने के लिए। पेड़ के नीचे कथा होती है, तो पेड़ के ऊपर जो बांबू रहता है उसके ऊपर, उसके होल के अंदर वो बैठता है और पूरे 7 दिन कथा सुनता है। 7 दिन की कथा के अंत में वैकुंठ से विमान आता है, और उस भूत के जीव को, जो भाई है ना धुंधकारी को, उसका सूक्ष्म देह जो है, भूत का शरीर नष्ट होकर उसको चतुर्भुज वैकुंठ का शरीर प्राप्त होता है, सबके आंखों के सामने। वो जो दंडी है वो बांबू वाली, उस पर 7 गांठ होती है, वो 7 गांठ भी अपने आप छूट जाती है एक एक दिन के बाद में, और सबके आंखों के सामने उस बांबू के शरीर से चतुर्भुज विष्णु दूत का शरीर प्रकट होता है, और सबके सामने वैकुंठ वाले विमान में विष्णु के दूत उसको बिठाते हैं और गीत गाते हुए वैकुंठ ले जाते हैं। अभी आप लोग पूछेंगे, अरे जिस भैया ने कथा किया उसको लेने को विमान नहीं आया, तो वो जो धुंधकारी है ना, वो जब विष्णु का रूप धारण करता है, सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है, तो वो खुद पूछता है उन दूतों को कि मेरे भैया को लेने के लिए विमान नहीं आया। तो उसकी तो हो गई सारूप्य लोक की मुक्ति हो गई उसकी, तो विष्णु के दूत कहते हैं, इसका कारण ये है, अभी ध्यान सुनना कारण क्या है उसका। तो कारण उसका ये है कि तुम्हारे पास स्थूल देह नहीं था, क्योंकि तुम भूत की अवस्था में थे, तो भूत की अवस्था में ना नींद, ना खाना, ना सोना, देयर इज नो बॉडी ना। नींद किसको आती है? बॉडी को आती है ना, बॉडी सोती है। भूख किसको लगती है? बॉडी को लगती है, बॉडी को खाना देना पड़ता है। तो आपका शरीर नहीं था, तो आपने रात भर जगे रहकर जो दिन भर सुना उसका चिंतन किया, इसलिए आपके लिए विमान आया। तो गोकर्ण इस बात को सुनता है, सब लोग भी सुनते हैं, तो वो उन्हीं लोगों को लेकर दोबारा कथा करता है, और दूसरी कथा में वो स्वयं नहीं सोता है, और सुनने वाले भी सोते नहीं हैं, रात भर उपवास रखते हैं और कथा सुनते दिन भर गोकर्ण के मुंह से, और रात भर सब लोग बैठकर सुनी हुई कथा पर चिंतन करते हैं, और नेक्स्ट डे पुनः कथा सुनते हैं, फिर चिंतन करते हैं, फिर कथा सुनते हैं, फिर चिंतन करते हैं। तो सातवें दिन के अंत में अनंत विमान वहां से आते हैं वैकुंठ लोक से, हर एक के लिए एक विमान, उसमें चार चार विष्णुदूत, और गोकर्ण के लिए स्वयं हरि, भगवान हरि गोलोक से उतरते हैं गरुड़ जी को लेकर, और गोकर्ण को उस पर बिठाते हैं अपने गरुड़ पर, और बाकी सारे विमान एक 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 जीव को, विष्णु का जो शरीर है वैकुंठ का, वो चतुर्भुज शरीर प्राप्त करा के सबको वैकुंठ में ले जाते हैं। तो सार क्या है कथा का? चिंतन होना चाहिए, उसके लिए ध्यान से सुनना चाहिए, तब होगा चिंतन, तब होगी याद, है ना। जहाँ पर हम मन लगाते हैं उसी की याद हमको आती है। जैसे पिक्चर आप देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, बीच में सो गए, बीच में उठ गए, बीच में उठ गए, सो गए, बीच में कुछ एक अच्छा सीन आया तो आपको बहुत अच्छा लगा, वो तो घर जाके आपको वही याद आएगा, कोई अच्छा एक हीरो ने हीरोइन हीरो विलन को मार डाला, आपको बड़ा अच्छा लगा, वाह सत्य ने असत्य को नष्ट कर दिया, तो घर जाके आपको वही याद आएगा जिस पर आपने ध्यान दिया था, और जो जो आपने ध्यान नहीं दिया था वो आपको घर जाके याद नहीं आएगा। आए समझ में आपको? इस तरह से आपको जो भी आप सुनेंगे उसको आपको याद रखना है और चिंतन करना है उसके ऊपर। तो सबसे पहली कहानी मैं आपको इस फोटो की बताऊंगा, है ना, बहुत सुंदर फोटो है ना, थोड़ा सा ऊपर से निकल गया लेकिन बहुत सुंदर फोटो है। राधा रानी के बालों को कृष्ण भगवान सवार रहे हैं, और हाथ में जो आईना है उसके अंदर राधा रानी खुद को नहीं देख रही हैं, कृष्ण भगवान को देख रही हैं। कथा ऐसी है कि एक गोवर्धन के अंदर एक वन है, उसका नाम है कुसुम वन, पुष्प वन, सुमन वन, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सुगंधित और सुंदर सुंदर फूलों के लिए मशहूर था वो, और वहाँ से गोपियाँ जो हैं वो रोज़ अपना अपना फूल बिना करती थी, वहाँ पर आती थी, फूल बिनती थी, और फिर जमुना जी में लेकर जाके धोती थी उनको, और कृष्ण के लिए उसके लिए माला बनाती थी, उनका रोज़ का लीला था। हम भी फूल बिनते हैं और वो भी फूल बिनते थे, लेकिन हमारे फूल बिनने में और उनके फूल बिनने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो मग्न होकर, तन मन धन, तन मन भावना सब खोकर, एकाग्र होकर उस फूल बिनने की क्रिया में अपने आप को लीन करते थे, सब कुछ भूल जाते थे वो, कि हम कहाँ है, कौन से शरीर में है, कौन से वन में है, कुछ नहीं, केवल कृष्ण के लिए फूल बिनना है, इसी विचार से वो अपने आप को पूर्णता उस कार्य में अर्पित करती थी। तो ऐसे ही एक दिन राधा रानी और सब गोपियाँ जो है उस फूल के वन में इतना फूल बिनने में मशगूल हो गई थी, इतना मशगूल हो गई थी कि उन सब कुछ खो गई थी, उनको कुछ याद नहीं था वो कहाँ पर है। फूल बिनने में इतनी कि इसका फूल का ये बनाएंगे, उसका वो बनाएंगे, इसका ऐसा बनाएंगे, उसका वैसा बनाएंगे, यहाँ पर अच्छे फूल है, वहाँ पर अच्छे नहीं है। तो अचानक उनको ना डंडे को जमीन को मारने की आवाज़ आती है, सबका ध्यान जो है ना भंग हो जाता है, अरे कहाँ से आवाज़ आ रही, सब देखते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही, देखते हैं कि माली आ रहा है और हम लोग को पकड़ेगा, वो माली हमको दंड देने के लिए डंडा लेकर जमीन को पटकते हुए आ रहा है। सब गोपियाँ कहते, राधा रानी, विश्वभानु नंदिनी, श्री जी, सतर्क हो जाओ, अभी हमको निकलना है यहाँ से, क्योंकि वो पास आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि हमको निकलना है तो देखते हैं कि हमारा सारे पल्लू कांटों में अटके हुए हैं और फूल सब वस्त्र में है, वस्त्र सब कांटे में अटके हुए, तो उसको छुड़ाना है तो कुछ फूल गिर रहे हैं, तो यहाँ छुड़ाया तो यहाँ के फूल गिरे, वहाँ छुड़ाया तो फूल गिर गए, तो कुछ बचे, तो गोपी ने अपने आप को कांटों से मुक्त किया और सब गोपियाँ जो है भागने लगी, सब पुकार रही है, श्री जी भागो। तो श्री जी तो देख रहे हैं कि सारे जगह वस्त्र अटके हुए हैं उसके, तो डंडे का आवाज़ जो है ना नज़दीक आता है और नज़दीक आता है और नज़दीक आता है, और गोपियों की आवाज़ और कम 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 होते आ रहे, क्योंकि गोपियाँ दूर दूर जा रही है ना, तभी यहाँ से पुकार रही हैं, बाद में वहाँ से पुकार रही है, बाद में वहाँ से पुकार रही है, तो उनकी पुकारने की आवाज़ जो है कम कम होती जा रही है और डंडे की आवाज़ बढ़ रही है, क्योंकि डंडे वाला आदमी पास में आ रहा है, दूर से पुकार रही है, भागो श्री जी भागो, आ रहे हैं, तो ये सब समस्या के अंदर क्या होता है, उनको डर लगता है बहुत, पकड़ी जाएगी तो उनके कपाल पर बहुत पसीना के बिंदु आ जाते हैं और वो बहुत कोशिश करती है कि यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो, तो सारे जगह पे यहाँ निकालते तो यहाँ अटकता है, यहाँ निकालते तो यहाँ अटकता है, और जितने फूल बिने थे वो सब गिर जाते हैं, और आखिर में वो माली राधा रानी के पास पहुँच जाता है डंडा लेकर, बड़ी आँखें से लाल लाल करके उसको देखता है, तो जितने फूल हाथ में थे वो भी सब गिर जाते हैं और बहुत पसीना आता है और बहुत दिल में धड़कन बढ़ती है डर के मारे। अभी क्या करें, अभी उसको देखें कि इधर देखें उधर देखें कि भाग जाए, क्या करें, भाग तो सकते नहीं है। कुछ क्षणों के लिए ये टेंशन का सीन बना रहता है, उसके बाद माली अचानक हंस देता है, स्माइल। जब हंसता है तो श्री जी को पता चलता है कि ये तो कृष्ण ही है, माली बन के आया था। तो पूरा अरे मुझे लगा कौन है, तुम हो, ओ। फिर कहते हैं कि आज आपने ऐसी लीला कैसे की, सब गोपियों को भगा दिया, माली का भी धारण किया, हाँ मुझे भी डरा दिया, क्या बात है। तो कहते हैं आज आपको मुझे अकेले मिलने का मन था, इसलिए मैंने सब गोपियों को भगाने की योजना बनाई। सब जब भाग गई तब मैंने आपको स्माइल दिया, ताकि अभी वो दूर जा चुकी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं कि क्या करते हो यहाँ पर, तो बोले यहाँ पर फूल बिनते हैं आपके लिए। तो ये तो सब फूल तो नीचे गिर गए, सब गंदे हो गए अभी, तो आप आमतौर पर क्या करते हो। राधा रानी कहते हैं हम लोग यहाँ से फूल लेके बहुत दूर चल के जमुना जी पहुँचते हैं, वहाँ पर फूल धोते हैं और आपके लिए माला बनाते हैं श्रृंगार के लिए। बोले चलो चलेंगे हम जमुना जी में। नहीं 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 अभी तो मैं आपके साथ में अकेले कैसे आ सकती हूँ, सब लोग देखेंगे ना हमको, अभी संकोच हो रहा है बड़ा, मैं आपके साथ में आम जनता में चल नहीं सकती। तो फिर क्या किया जाए, फूल तो धोना ही है तो जमुना जी का होना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, जमुना जी को यहाँ लेके आएंगे, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जमुना जी को हम लोग यहाँ बुला लेंगे। तो भगवान ने अपने पैर का जो है ना क्या कहते हैं उसको, एड़ी, हाँ हील, उसको ज़मीन में ऐसा जोरदार उसका आघात किया तो ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा बन गया, और भगवान ने जमुना जी को आह्वान किया तो जमुना जी आई और उन्होंने गड्ढा को भर दिया पूरा, तो उसके सब क्या बना, कुसुम सरोवर। वो जो कुसुम सरोवर है ना, बहुत भव्य विशाल सुंदर कुसुम सरोवर है ना, जो इतना देखने में मनोहर है, वो कुसुम सरोवर भगवान के पैर के जमीन में गड्ढा होने से और जमुना जी के आने से हुआ है। वो कहते हैं वो कई हजारों योजन गहरा है, यहाँ तक कि पाताल लोक तक गया ऐसे कहते हैं, उसका वर्णन है। तो फिर जमुना जी को कुंड के रूप में वहाँ प्रकट करने के बाद में राधा रानी और भगवान मिलकर उन फूलों को धोते हैं, और उस दिन राधा रानी के द्वारा माला बनने के बजाय भगवान उन फूलों से राधा रानी के बालों का श्रृंगार करते हैं, ये उसका दृश्य है। ऐसा सुंदर दृश्य है कि जिसमें उस किनारे में बैठकर भगवान राधा रानी के बालों को संवार रहे हैं, उनको श्रृंगार कर रहे हैं, उसका नाम है कुसुम सरोवर। इसी जगह पर उद्धव जी ने तपस्या किया था, हाँ उद्धव जी की कथा भी बहुत सुंदर है। वो कथा ऐसी है कि आप सब जानते हैं कि भगवान जब वृंदावन छोड़कर जब मथुरा चले गए, तो मथुरा जाने के बाद में बोला था उन्होंने कि हम परसों आ जाएंगे, है ना। तो कथा उसकी ऐसी है कि वो अक्रूर जी आए थे उनको लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि हम दो दिन में इनको वापस लौटा देंगे। नंद बाबा जाते हैं उनके साथ में, नंद बाबा ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम। तो जो गोपियां नंदगांव से रथ को आगे निकलने देती नहीं, वो सब जमीन पर सो जाती हैं, बोले एक काम करो हमारे ऊपर से रथ को लेके जाओ, हमारा वध होने दो, फिर आप जाओ जहाँ जाना है, क्योंकि हम आपके बिना हम रह सकते नहीं, हमारा जीवन मुमकिन ही नहीं आपके बिना। तो भगवान गोपियों को समझाते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, ये कोई प्रेम का लक्षण नहीं है, थोड़ा संयम भी होना चाहिए, थोड़ा धीरज भी होना चाहिए, थोड़ा विश्वास भी होना चाहिए कि मैं जब कह रहा हूँ मैं आऊँगा तो यू शुड हैव यू शुड हैव फेथ दैट आई एम कमिंग। इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं कहीं लंबा नहीं जा रहा हूँ। तो फिर वो हट जाते हैं, लेकिन फिर भी हटने बाद में जब रथ आगे जाता है तो उसके पीछे भागने लगती है पागलों की तरह। भगवान क्या करते हैं, वज्रपात करते हैं। एक गांव में जो आगे एक गांव है, नंदगांव के आगे रास्ता है, अखरूर गमन मार्ग है, उस पर एक गाँव है, उसका नाम है ब्रजवारी, उसका नाम है, उसको आज बिजवारी कहते हैं, उसका नाम वज्रवारी एक्चुअली है। तो भगवान जो है वज्र का आघात करते हैं, इतना भयंकर आवाज होता है कि उससे सारी गोपियां बेहोश हो जाती हैं, सारी गोपियां ऑल अनकॉन्शियस, और उसका फायदा उठाकर तुरंत भगवान अक्रूर को लेके आगे चले जाते हैं। जैसे जब ही सरयू किनारे में रामचंद्र जी भगवान वनवास जाते रहते हैं, देखते हैं सब लोग सो रहे हैं, तुरंत उठ के रथ को लेके निकल जाते हैं, नदी पार करके जंगल में चले जाते हैं। उसी तरह से भगवान गोपियों को बेहोश करके तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन ये गोपियों का प्रेम इतना रहता है, इतना उत्कट रहता है कि वो तुरंत जग जाती है उसके बाद में, और हवा की गति से भागते हैं, और हवा की गति से भाग के रथ से जाने वाले भगवान को पकड़ लेते हैं एक गांव में, फिर रोकते हैं। आप सोच सकते हैं, रथ जो है मनुष्य के चलने की गति से अधिक भागता है ना जोर से, और ये बेहोश होकर गिर गई हैं, और रथ ऐसा आराम से चला था नहीं, उनको तुरंत जाना था, तो कितनी तेजी से गए होंगे वो, फिर भी कुछ देर बाद होश में आने के बाद में ये उतने गति से भागते हैं कि भागने वाले रथ को पकड़ लेते हैं। ये है प्रेम की उत्कटता। हाँ, उनके अंदर ऐसा फोर्स था प्रेम का, जिसकी वजह से एक गांव में वो उनको पकड़ लेते हैं। तब जाकर भगवान कहते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा। उस गांव का नाम क्या पड़ा? पलसों। हाँ, उस गांव में भगवान ने वादा किया था कि मैं परसों आऊंगा। फिर गोपियां वहां से लौट के आई हैं और भगवान फिर उधर गए। ऐसे उनका प्रेम था। उधर के बाद में वो वहां गए, वृंदावन गए ना, वहां पर फिर कोवलया पीढ़, फिर चाणूर मुष्टिक तोशल तोशल और बहुत मुष्टि योद्धाओं का वध किया, फिर कंस का वध किया, कंस के भाइयों का वध किया, बहुत सब सेना का वध किया, फिर उग्रसेन को मुक्त कर दिया। हाँ, फिर वसुदेव देवकी को मिले। नंदगांव वासियों के लिए सबसे करुण प्रसंग जो है ना, यही प्रसंग है, सबसे करुण प्रसंग, क्योंकि तब तक तो वो आने वाले थे, उन्होंने वादा भी किया था कि हम आएंगे, लेकिन वो प्रसंग जो हुआ उसकी वजह से उनका आना कैंसिल हो गया। वो क्या प्रसंग था? वसुदेव और देवकी को मिले कृष्ण बलराम, और कृष्ण ने कहा कि हे माता पिता, हमने आपको कभी सेवा नहीं की आपकी, आपसे दूर रहे, अभी आपके पास आ गए हैं, अभी आप जो कहेंगे वो आज्ञा पालन करेंगे, क्या आपकी आज्ञा है? तो देवकी कहती है कि अभी आपको हमारे पास रहना है और गुरुकुल जाना है यहाँ से। बोला यस माता जी। जैसे ही ये सुनते हैं ना बात, तो सब नंदगांव वहाँ जितने वहाँ पर आए थे सब दुखी हो जाते हैं, अभी तो जीवन में क्या अर्थ होगा, क्या मुंह दिखाएंगे गांव में जाके, कृष्ण बलराम को लेके गए वापस लेके नहीं आए, क्योंकि अभी तो वो नहीं आने वाला है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि देवकी वसुदेव को संतुष्ट करें वो। तो नंद बाबा को ना इतने पैर भारी हो गए कि वो आगे चल नहीं पाए वापसी की ओर, काम तो हो गया था, अभी जाना था उनको वापस लौट के, तो वो नंदगांव की ओर चले तो उसको आगे ही नहीं बढ़ पाए, वो एक गांव में रुक गए। तो जैसे वो गांव में रुक गए तो वो गांव तो उनका ही था, राज्य था उनका नंदगांव का, तो सब लोग खुश हो गए, बड़े उनका बड़ा स्वागत किया, अरे राजा आ गए हमारे, बड़ा खान पान बनाया। राजा बहुत दुखी थे एकदम, थोड़ी वहां पर एंजॉय करने के लिए, उनका पैर नहीं चल रहा था इसलिए रुकने के लिए वहां पर आ गए। तो लेकिन सभी लोगों ने मिलकर नंदगांव का, नंद बाबा का बहुत बड़ा गौरव किया, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा गौरव। अभी भी गांव है, मथुरा के नंदगांव के रास्ते पर है। तो फिर सबका सत्कार स्वीकार किया, बाहर तो खुशियां दिखा रहे हैं, मन में इतना दर्द है कि अभी जाऊंगा कैसे गांव में मैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यशोदा को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा उसको, ये चिंता में थे वो। फिर निकले वहां से वो, और यशोदा जी के पास जब पहुंचे तो बड़े उदास लग रहे थे वो। हाँ, तो वो यशोदा कहते कि कहाँ है तनुआ बलुआ, कहाँ है, खेलते होंगे नीचे, अभी आते ही खेलना शुरू किया क्या उन्होंने, ऊपर भी नहीं आए माता को मिलने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैंने उनको फ्रेश मक्खन बना के रखा है। फिर पूछते कहाँ है वो, नंद बाबा चुप हैं, बोले कहाँ पर है वो, फिर भी वो चुप हैं। फिर वो अपने आप बोलते जा रही है, हाँ बहुत नटखट बालक है, अभी वो इतने खेलने वस्ते, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, सफ़र से आए थके होंगे, फिर भी खेल में इतने व्यस्त हो गए, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और अच्छा मक्खन बना लेती हूँ, फिर उनको नहलाऊंगी, फिर मैं जल भी तैयार रखा है, सुगंधित द्रव्य भी तैयार रखा है, अलंकार भी तैयार रखे हैं, वस्त्र भी तैयार रखे हैं, अभी उनको सब सखियों को बुला के रखा है, सब आरती की तैयारी भी करके रखी है, फिर उनको नहलाएंगे, फिर मक्खन खिलाएंगे, फिर स्नान करेंगे, अपने ही चिंतन में है वो, लगी हुई है कि क्या क्या करना है। और फिर पूछती है कि कहाँ पर है वो। फिर बहुत देर के मौन के बाद में नंद बाबा अपना मुंह खोलते हैं, कहते वो नहीं आए। तो यशोदा जोर से हंस पड़ती है, अच्छा मजाक भी करने लगे मेरे साथ आप, लेकिन आप अभी मुझे रहा नहीं जाता, अभी तुरंत उसको छुपाओ मत, अभी तुरंत लेके आओ, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, कितनी देर हो गई आपको आके, सब तैयारी मेरी पूरी हो गई है, अभी तक नहीं आए, जाओ उनको लेके आओ। फिर वो कहते यशोदा वो नहीं आए। बोले क्यों ऐसे कठोर बातें करते हो आप, मुझे ये ऐसा इस तरह का बातें अच्छी लगती नहीं है, मुझे सहन नहीं हो रहा है, उसको बुला लाओ। तो फिर वो उसको बिठाते हैं, समझाते हैं कि वो नहीं आए। बोला क्यों नहीं आए, तो फिर पूरा प्रसंग समझाते हैं उनको, कैसे माता के पास गए, कैसे चरण छुए, कैसे आज्ञा मांगी, कैसे आज्ञा मिली और कैसे आज्ञा पालन के रूप में यहाँ पर नहीं आए। तो सारा उनका प्रेम जो था ना वो गुस्से में रूपांतर हो गया उसका, वो डांटने लगी नंद बाबा को, क्या कर रहे थे आप वहाँ पर उस समय, क्यों नहीं समझाया उनको, क्यों नहीं बुला के लेके आए, क्यों देवकी को नहीं समझाया कि नहीं वादा किया था उसने आने के लिए, तो क्यों नहीं उनको समझा बुझा के लेके आए आप। तो बता रहे हैं कि मुमकिन नहीं था मेरे लिए, मैं नहीं कर पाया, हमारे कृष्ण की इच्छा के खिलाफ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तो मैं असहाय था, मुझे जाना पड़ा वहाँ से, और नहीं ले पाया उनको, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं ले पाया उनको। तो इनका क्रोध जो है ना, वो जैसे एक एक बातें कर रहे हैं, इनका क्रोध बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर वो ऐसी बात करती है कि आप पिता ही नहीं हो, आप पाषाण हृदयी हो, आप कठोर हृदयी हो, आप दुष्ट हो, आपसे अच्छे दशरथ महाराज थे, वो बालक की याद में जीवन को चला नहीं पाए, वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, मर गए वो, अच्छा होता कि आप वहीं मर जाते, इनको बिना लेके आए यहां पर आने के बदले में आप वहीं मर जाते तो अच्छा था। मतलब कि वात्सल्य प्रेम का पराकाष्ठा है ये, वो अपने खो बैठी, वो क्या बोल रही है उसको पता नहीं है, इतनी याद में तड़प रही है वो कि पिता पति को कुछ भी बके जा रही है। तो वो कहती है कि तुमको मर जाना था वहाँ, चाहिए था वहाँ पर, तुम्हारे को प्रेम करने को नहीं आता है बाल पुत्र के ऊपर, वो कला दशरथ जानते थे लेकिन तुम्हें वो कला पता नहीं है कि बालक पर कैसे प्रेम किया जाता है, तुम जीवित होकर यहाँ पर कैसे आए, कैसे पिता हो तुम। आप सोच सकते हैं नंद बाबा पर क्या बीतती होगी, हाँ वो ये भी जानते कि मेरे पत्नी का बालकों पर कितना प्रेम है और क्यों वो कह रही है, वो भी जानते हैं वो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कितना असह्य होता होगा उनको सुनकर। तो वो इतने मैच्योर पति थे कि वो शांत रहे, जो जो बकने का था उसको बोलने दिया उन्होंने। फिर एक समय ऐसा आया कि बोल बोल के वो थक के बेहोश हो गई, फिर उसको गोद में लेकर पानी छिड़काया, फिर होश में लाया, फिर रोने लगी, सिसकने लगी, क्या क्या नहीं हुआ उसको, बहुत दुख हुआ उसको। तब जाकर नंद बाबा ने उनको समझाया, देखो यशोदा मरना तो बहुत आसान था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी उसमें, मुझे भी एक क्षण भी और उसको लाए बिना यहाँ जीने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने मुझे जाते वक्त कहा था कि मैं लौट के ब्रज में आऊँगा, एक वाक्य उसने कहा था कि ये सब कर्तव्य करके मैं दोबारा लौट के आने वाला हूँ ब्रज में। तो मैंने सोचा कि अगर वो लौट के आएगा और तुम्हें और हमें मरा हुआ पाएगा, मतलब कि है ही नहीं अभी ये गुजर गए, तो उस पर क्या बीतेगी, ये सोचकर मैं मरा नहीं। यशोदा मरना तो बड़ा आसान था लेकिन हमें जीना होगा, उसके लिए जीने का इंटरेस्ट ना होते हुए भी हमको उसके लिए, उसके आने के लिए जीना होगा, ताकि वो जब आएगा तो मैया और बाबा को देखेगा और खुश होगा, उसकी उस खुशी के लिए तुम्हें भी और मुझे भी दोनों को जीना होगा, इसलिए मैं मरा नहीं, यहाँ पर जैसे मुर्दा है वो शरीर लेके वैसे मैं यहाँ पर आ गया, और ऐसे हमको जीना है जब तक वो आएगा, क्योंकि उसने कहा था कि वो आएगा। इसे कहते हैं प्रेम। हाँ, ऐसा प्रेम नंद बाबा यशोदा के हृदय में था भगवान के लिए, और वैसा ही प्रेम सखाओं के मन में था, वैसा ही सखियों के मन में था। उसके बाद में ना ब्रज में किसी ने ऐसे कहा कि किसी ने होली नहीं खेली, ना होली खेली, ना उत्सव मनाए, कुछ नहीं हुआ, केवल एक ही उत्सव था रोज का, रोज सुबह से लेकर शाम तक तैयारी करना कि वो आएंगे, फूलों की माला बनाना, व्यंजन बनाना, कुंज को सजाना, निकुंज को सजाना, हाँ क्या क्या करते थे पहले, वो सब करने की तैयारी करना, छाक बनाना, भोजन बनाना कि अभी आएंगे तो वन में जाएंगे गाय को लेके, तो छाक भेजना पड़ेगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा। और रात को वो नहीं आया, आज भी वो ये देखकर सब माला तोड़ देना, सब श्रृंगार तोड़ देना, सब तैयारी को तोड़ देना, सब खाना पीना सब उध्वस्त कर देना और छाती पीट कर रात भर रोना। फिर सूरज के आते ही फिर नई उम्मीद से वापस तैयारी करना कि आ जाएंगे। ऐसे एक दो दिन नहीं किया, एक हफ्ता नहीं किया उन्होंने, 112 साल किया। जब कृष्ण भगवान 125 साल के हो गए, 125 साल के हो गए, तब तक रोज किया उन्होंने ऐसा। बीच में उन्होंने, उनको बार बार खबर मिलती थी वहां पर, वो द्वारका गए, वहां पर राजा बने, द्वारकाधीश बने, उनका 16,108 पत्नियों के साथ विवाह हो गया, महल बनाए, गृहस्थी आरंभ किया, हर एक पत्नी को 10 बच्चे, 10 लड़के, एक लड़की दिया। हाँ तो उन्होंने बेचा कि मेरे जो ब्रजवासी है वो सब बड़े दुखी हैं मेरे विरह में, उद्धव जाओ तुम ब्रज में जाओ, मेरा पत्र लेकर जाके उनको पढ़ाओ और सुना दो उनको कि मेरी भी अवस्था कितनी ख़राब है आपके लिए, लेकिन मैं थोड़ा कर्तव्य में फंसा हूँ, मैं आऊँगा, जाके सांत्वना करके आना। और गोपियों का पूरा बैकग्राउंड भगवान ने उनको दिया, कैसी गोपियाँ थी और कैसे मेरी सेवा करती थी, कैसे मेरे साथ रहती थी, और अभी वो कैसे दुखी हैं और मेरे विरह में कितनी व्याकुल हैं। तो ये उद्धव जी महाराज जो थे ना, वो बड़े पंडित थे, वो बड़े विद्वान थे। और क्या उनकी स्थिति थी, एक भक्त को जीवन में क्या चाहिए, भगवान का सानिध्य चाहिए, भगवान का संग चाहिए, उठना बैठना खेलना बोलना मजाक करना शिकार खेलना जो भी था उनका सब कुछ भगवान के हाथ में होता था। उनका इतना अच्छा उनका स्थिति था कि कोई भक्त अपने जीवन में ऐसे चाहेगा कि मेरे भी ऐसे होना चाहिए, इतना भगवान के पास में उठना बैठना मजाक करना बेडरूम में शिकार खेलना, उनका चचेरा भाई भी थे वो, सेनापति भी थे, सलाम मशवरा करना, क्या हर चीज़ उसके साथ में करते थे, इतना निकट थे भगवान के वो, मतलब एक दृष्टि से भगवान के संग में परमोच्च अवस्था में पहुंच गए थे वो। तो भगवान ने सोचा कि द्वारका की पाठशाला से अभी उनको वृंदावन की पाठशाला में डालना चाहिए, वे ग्रेजुएट तो हो गए वो, वे उनको पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए इस पाठशाला से ब्रज की पाठशाला में भेजना चाहिए। इसलिए उन्हें गोपियों का खत का बहाना करके उद्धव को बोला तुम जाओ अभी। तो उद्धव बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा कि अरे जो किसी व्यक्ति के विरह में होता है उसको योग करना चाहिए, योग करने से दुख और सुख की भावना से हम परे हो जाते हैं, तो मैं जाके गोपियों को योग सिखाऊंगा और ज्ञान भी दूंगा, दो चार ज्ञान की बातें बताऊंगा, ज्ञान सुनने से वैराग्य आता है तो ये सब जो अटैचमेंट वगैरह जो है वो सब भूल जाएंगे और सुखी हो जाएंगे, वो दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो उनके विरह से दुख से मुक्त करने के लिए, उनकी जो आसक्ति की वजह से उनको दुख हो रहा है ना, तो मैं उनको आसक्ति से मुक्त कर दूंगा ज्ञान और योग के द्वारा, ऐसा प्लानिंग करके आ रहे हो, डॉक्टर को भेज रहे ना वहाँ से पेशेंट को देखने के लिए लेकिन वो क्या देखते हैं, जमुना किनारे में सारी गोपियाँ ध्यान लगाकर बैठी हैं एक योगी की अवस्था में। बोले ऑलरेडी योग कर रही हैं, मैं उनको क्या योग सिखाऊंगा। तो पूछते हैं कि आप क्या कौन सा योग कर रही हैं, तो बताए क्या बोलते हो, गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग जो हृदय में कृष्ण बस गए हैं ना, उनको हृदय से निकाल देने के लिए योग कर रहे हैं। मतलब मैं तो योग ऐसा सुना था कि भगवान को बिठाने के लिए योग करते हैं सब योगी ध्यानी तपी जो है, उनका मन यहाँ विचलित होता है तो मन को एकाग्र करके वो श्री कृष्ण भगवान को हृदय में ऐसा पैक बिठाने के लिए वो योग करते रहते हैं। वो योग मैंने सीखा था, वो सुना भी उसके बारे में था, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं उसको मन से निकालने के लिए, ये भी कौन सा योग होता है तो वही बिल्डर हो गया पहले वो, कि ऐसा योग तो मैंने पहली बार सुना कि जिनके जीवन में अनायास भगवान कृष्ण मन में बैसे हुए हैं उसको निकालने के लिए योग कर रहे हैं, ये तो बड़े अजीब योगी हैं। फिर नंद बाबा के पास जाने का प्रयास किया उन्होंने, तो उन्होंने पूछा नंद बाबा कहाँ रहते हैं, तो लोगों ने कहा कि ये दो नदियाँ यहाँ बह रही ना, उसके किनारे से जाना, नंद भवन पहुँच जाओगे। बोला क्यों, बोला जब से कृष्ण भगवान गए हैं तब से इनके आंसू रुके नहीं और यही आंसू नदी के रूप में बह रहे हैं, एक यशोदा की आंसू की नदी, एक नंद बाबा के आंसू की नदी, उसके किनारे किनारे चले जाओ वहीं तक पहुंच जाओगे। तो वहां पर भी दंग हो गए, एकदम दंग रह गए। पर गोपियों से मुलाकात हुई उनकी, गोपियों ने कहा कि हमारा हृदय का जो पहले लगा, पहले उनको लगा कि गोपियों को लगा कि अरे ये तो कृष्ण भगवान ही आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी का रंग था ना, रंग सब कुछ कृष्ण भगवान जैसा था, एकदम सेम। तो जब पास जाके देखा तो बोला अरे कृष्ण ये तो अलग आदमी, तो थोड़ा सा संकोच से हट गई वो। फिर उन्होंने कहा कि आपको पत्र देना है, तो बोला आपको आम जनता में कैसे पत्र देंगे, पूरे जंगल में जाएंगे एकांत में। तो वो नंदगांव का जो उद्धव क्यारी है, अभिराम उसका उद्धव क्यारी है, वहाँ पर जाके उन्होंने एकांत में गोपियों ने अपना हृदय व्यक्त किया। व्यक्त किया मतलब क्या, पहले भगवान के विरह में दुख व्यक्त किया, फिर क्रोध व्यक्त किया, फिर पागल जैसे बातें की, कुछ भी है भ्रमिष्ठ जैसे बातें की उन्होंने। उसका पूरा संवाद जो है ना वो अनाकलनीय है कि कैसे गोपियाँ बात करती हैं। एक बार गाली देती है, एक बार प्रेम दिखाती है, एक बार बोलती है उसको भूल जाना है, एक बार बोलती है कभी उसको भूल नहीं सकती है, एक बार बोलती है कि हमको जरा भी उसको बनने लगता है उसके ऊपर, वो दुष्ट है, वो पापी है, किसी को उस पर प्रेम नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ा चीटर है, ऐसे गालियाँ बकती हैं उसके लिए, फिर प्रेम को दिखाती है, फिर गालियाँ बकती है। मतलब वो अवस्था देखकर उद्धव सोचते हैं कि इनको मैं क्या सिखाऊंगा। वो खाली उनको एक ही अनुभूति ऐसी हुई उद्धव जी को केवल ऐसी अनुभूति हुई कि ये कृष्ण के इतने पास में है जितना पास उनके साथ रहकर भी मैं नहीं हूँ, इतना उसको समझ में आया। बाकी डिटेल समझ में नहीं आया उसका कि इनकी भावना कौन से स्तर पर, उसका जो कसरत हो रही है ऐसा भावनाओं की वो कौन से स्तर पर निकल रही है, कितना प्रेम है उनका, वो समझ में नहीं आया उसको। लेकिन इतना बात जरूर समझ में आया कि ये सारी भावनाओं के बीच में वो कृष्ण भगवान से इतने पास में है, इतने निकट है हृदय से, कि मैं भी शरीर से उनसे पास होने पर भी इतना निकट नहीं हूँ जितना ये मुझसे अधिक निकट है। तो उसने अपना फॉर्मेलिटी किया, उनको सब खतवत दिया और लौट के आया। वो कृष्ण भगवान को पूरा रिपोर्ट दिया कि क्या क्या उनकी अवस्था है, और तुरंत निकलने लगा। तो भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो, मैं दोबारा ब्रज जा रहा हूँ। बोले क्यों, बोले मैं समझ गया कि आपके मैं इतना निकट होने पर भी मैं आपसे बहुत दूर हूँ, और आपसे इतना दूर होने पर भी वो गोपियाँ आपसे बहुत निकट हैं, इसलिए मुझे अभी ये विश्वास हो गया है कि मुझे इन गोपियों की चरणों की रज प्राप्त होनी चाहिए, और अगर मुझे इन गोपियों की रज चरण की रज प्राप्त होनी है तो मुझे वो चरण की रज देंगे नहीं, क्योंकि मैं सेनापति हूँ, मेरा कुछ पोजिशन है, और मैं आपका चचेरा भाई हूँ, और मैं ऐसा हूँ, और आपसे निकट हूँ वगैरह वगैरह, मेरी बहुत पोजिशन है, तो मेरा बड़ा आदर करती हूँ, तो मुझे अपने को अपने चरणों की रज तो देंगे नहीं वो, और मुझे चरणों की रज चाहिए, तो क्या करना होगा। बोले मैं ब्रज में जाकर तपस्या करूंगा, और तपस्या करके तृण का पत्ता बनना चाहूंगा, क्योंकि तृण का पत्ता के ऊपर चलने को गोपियों को कोई संकोच नहीं है। तो जब मैं तृण का पत्ता बनूंगा तो मेरे ऊपर चलने के लिए गोपियों को कोई संकोच नहीं होगा, मुझे अनायास ही उनके चरणों की रज प्राप्त होगी, तब ये जो भक्ति का रहस्य जो गोपियों का है थोड़ा बहुत मेरे समझ में आएगा। तो लोग तपस्या क्यों करते हैं, उच्च पद प्राप्त करने के लिए। तपस्या की व्याख्या क्या है, स्वेच्छा से स्वीकार किए गए असुविधाएं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए असुविधाओं को तपस्या कहते हैं। मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं ना, भगवान के विषय में और नजदीक जाने के लिए और उच्च पद प्राप्त करने के लिए। यहां पर जिसको सबसे ऊंचा पद प्राप्त हो गया है तो भगवान के पास बैठता है, भगवान उसके मित्र हैं, भगवान सबके साथ खाते हैं, सोते हैं, मजाक करते हैं, शिकार खेलते हैं, वो सारी अवस्था जो हर एक भक्त को प्राप्त होनी चाहिए वो उसको प्राप्त थी, उस अवस्था को छोड़कर वो ब्रज में एक तृण का पत्ता बनना चाहता है। मतलब क्या, डिग्रेडेशन। हाँ, ये उद्धव की चेतना है। उद्धव हैज़ अ वेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। उद्धव जी ने फिर ब्रज में जाकर तपस्या किया है, और कहाँ तपस्या किया है, इसी कुसुम सरोवर के किनारे में वहाँ पर उद्धव जी की बैठक है, और उसके बिल्कुल इस तरफ उद्धव कुसुम सरोवर है, और उस तरफ उद्धव कुंड है जहाँ पर उद्धव ने तपस्या किया था, बहुत कठोर तपस्या किया था, एक ऊंचे पद से एक तुच्छ पद पर जाने के लिए। जस्ट इमेजिन, हाँ, एक श्रेष्ठ पद से तुच्छ पद को प्राप्त करने के लिए कितना नम्रता होना चाहिए, हाउ मच प्रिपेयर्डनेस मस्ट बी देयर एक अच्छा पद छोड़कर एक तुच्छ पद प्राप्त करने के लिए, और वो बने हैं गुलमलता, मतलब तुरुण का पत्ता। और फिर उन्होंने ब्रज में गोपियों के चरणों का रज प्राप्त किया है, और आज भी उद्धव जी वहाँ पर तृण के पत्ते के रूप में निवास करते हैं। और वहाँ पर उसे किनारे में और एक कथा हुई है, यथावकाश। जैसे ये तो भगवान के जीवन में हुआ ना कथा, भगवान के द्वारकाधीश होते हुए कथा हुई, तो तब से वो तो ब्रज में लौट के वापस नहीं आए, वो वहीं रह गए, वो गोपियों के चरणों का रहस्य समझने के लिए वहीं रह गए, वो तृण का पत्ता बनने के बाद भी वहीं रह गए तृण का पत्ते के रूप में। फिर यथावकाश भगवान अंतर्धान हो गए, है ना, भगवान जब अंतर्धान हो गए तो उसके कुछ देर पहले भगवान दंतवक्र को मारने के बहाने मथुरा आए थे। दंतवक्र शिशुपाल का मित्र था, शिशुपाल का भगवान ने वध किया, दंतवक्र बहुत बदले की भावना में था, तो भगवान दंतवक्र को मारने के बहाने मथुरा में आए, दंतवक्र का वध किया भगवान ने, और उसका बहाना लेकर वो उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। तब ऐसा कहते हैं कि सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा एकदम मरणासन्न अवस्था में थे, मतलब उनका विरह जो है इतना परम स्थान पर पहुंच गया था, पराकाष्ठा हो गई थी विरह की, कि वो अभी शरीर को बचा के रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उस राइट अवस्था में भगवान ब्रज में गए, और सारे ब्रजवासियों को उन्होंने विमान पर बिठा कर गौलोक धाम लेके गए, वो सारे ब्रजवासियों को गौलोक धाम में उन्होंने छोड़ के आए वो, और फिर लौट के वापस आए, फिर द्वारका गए, फिर वो लीला हुई ना सब, यादवों ने फिर वो युद्ध किया अपने आप में, यादवों का नाश हो गया, है ना, वो गंधार ने छाप दिया था ना कि जैसे तुमने मेरे वंश का नाश किया है तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। तो भगवान को अच्छा लगा बहुत, क्योंकि भगवान को अपने वंश को वापस ले जाने का कोई बहाना चाहिए था यहाँ से निकालने का। एनीवे यादव वंश का नाश हो गया, फिर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान होने के पहले भगवान ने उद्धव को भी समझाया था, और जो था राजा परीक्षित महाराज, और उनके रुक्मिणी से उत्पन्न हुआ प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से उत्पन्न हुआ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से उत्पन्न हुआ वज्रनाभ। हाँ, इस वज्रनाभ को राजा परीक्षित ने मथुरा का राज्य दिया था कि भगवान का लीला स्थली है, उसको आप रीस्टैब्लिश करना। और परीक्षित तो वर्ल्ड के राजा थे पूरे, और उद्धव जी मित्र थे, तो उद्धव जी को उन्होंने पहले ही बता के रखा था, क्योंकि भागवत में एक अध्याय आता है उद्धव गीता, तो भगवान ने उद्धव को बोध दिया बड़े प्रेम से। तो उस समय भगवान ने उनको आदेश दिया था कि मेरी पत्नियां जब मैं अंतर्धान हो जाऊंगा तो ब्रज में आएंगी, क्योंकि मैंने परीक्षित को वज्रनाभ को आदेश देकर रखा है कि मैं जाने के बाद में वो बड़ी व्याकुल होंगी, तो उनको ब्रज में लेके जाना, वही उनका उद्धार होगा। ठीक है, तो परीक्षित महाराज अपने नेतृत्व में वज्रनाभ के साथ में 16,107 पत्नियों को लेकर वहां पर आते हैं। आठ क्यों नहीं, क्योंकि एक पत्नी उनकी ब्रजवासी थी जमुना जी, समझे ना, तो वो ब्रज में थी, वो फिफ्थ वाइफ नदी के रूप में जमुना जी ब्रज में ही थी। तो सारी पत्नियों को लेकर जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जमुना जी जो उनकी सौत है ना, उनकी को वाइफ है ना, बड़ी उमड़ रही है लहरों से एकदम, सब पत्नियां रो रही है भगवान की याद में, और कहती है तुम कैसी पत्नी हो, हमको इतना दुख हो रहा है कि भगवान नहीं रहे, अंतर्धान हो गए, हम दुखी हैं, रो रही है, और आप इतने आनंद से उमड़ रही हो। जमुना जी कहती हैं कि ब्रजवासियों को वैसे दुख नहीं होता है, क्योंकि हम सब लोग राधा रानी का अंश हैं, और ये सारे इसका जो रहस्य जो है ना, ये समझने के लिए आप कुसुम सरोवर जाओ और वहाँ उद्धव जी से मिलो, वो आपको इस रहस्य का भेद करेंगे कि हमको ऐसा विरह का दुख क्यों नहीं होता है जैसे आपको हो रहा है। तो जमुना जी का आशीर्वाद लेकर सारी सखियां, भगवान की जो पत्नियां हैं, वो उद्धव जी के पास आती है, मतलब कुसुम सरोवर के पास, और जमुना जी उनको बताती है कि उद्धव जी वहां पर तृण का पत्ता बनकर रह रहे हैं, उनको प्रकट करना है तो आपको भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करना होगा। तो उसका आदेश लेकर, उनका रहस्य को मतलब उसका नुस्खा लेकर वो वहां पहुंचती है, और भगवान की सारी पत्नियां मिलकर वहां पर संकीर्तन करती हैं भगवान के दिव्य नामों का। कितना प्रेम में कीर्तन होगा वो, हाँ, भगवान की इतनी निकट उनकी पत्नियां, द्वारका की पत्नियां थी, उन्होंने वहां पर बहुत जोरदार कीर्तन किया भगवान के नामों का। और वो कीर्तन के संकीर्तन के प्रभाव से गुलमलता के रूप में थे जो उद्धव जी, वो प्रकट हो गए, और कुसुम सरोवर के किनारे बैठकर उन्होंने भगवान के पत्नियों के लिए 30 दिन तक भागवत कथा किया है, 30 days ऑफ भागवत कथा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जैसे भगवान अंतर्धान हो गए तो उद्धव जी ने पूछा था उनको कि जब आप अंतर्धान हो जाएंगे तो पृथ्वी का कैसा होगा, कल्याण कैसे होगा, आपके अनुपस्थिति में उद्धार कैसे होगा लोगों का। उन्होंने कहा था कि मेरे भागवत जो है वो मैं ही हूँ, मेरे बाद भागवत जी का उदय होगा और वो मेरा ही स्वरूप होगा, और जो भागवत का श्रवण करेगा वो मेरे अस्तित्व का अनुभूति करेगा, मतलब जैसे मैं हूँ वैसे अनुभव करेगा वो। हाँ, तो भागवत जी ये भगवान का स्वयं स्वरूप है। कृष्णे स्वधामु पगते, भगवान का अपने स्वधाम में प्रकट होने के बाद में कृष्ण भगवान भागवत के रूप में प्रकट हो गए। तो जैसे ही उद्धव जैसे उच्च कोटि के भक्त के मुख से भागवत का वर्णन शुरू हुआ, तुरंत भगवान के पत्नियों का विरह का दुख खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही भगवान के उपस्थिति का अनुभव करने लगे। वो सबसे पहले उनका दुख जो है विरह का खत्म हो गया, और जैसे भागवत कथा आगे बढ़ने लगी वैसे उनको अति आनंद का अनुभव होने लगा। जब दशम स्कंध का वर्णन शुरू हुआ, भगवान की लीला का वर्णन हुआ, मतलब उनकी कथा शुरू हुई, सब कथा आ गया ना उसके अंदर, शादी की कथा आई, बाल कथा, सब कथा हुई, तो आकाश में सभी पत्नियों ने, भगवान के सभी पत्नियों ने अपने गौलोक धाम के मूल स्वरूप का दर्शन किया आकाश के अंदर, मतलब अपने ही मूल स्वरूप को देखा। और जब 12 स्कंध का वर्णन पूरा हुआ, भागवत जी का जब वर्णन समाप्त हुआ, तो वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गई और गोलोक धाम चली गई। तो भगवान ने क्या कहा था कि उनको ब्रज में लेके जाना, वही उनका उद्धार होगा। तो भगवान के विरह में बिलखती हुई पत्नियों का जो गोलोक धाम गमन है वो उद्धव जी के द्वारा की गई सर्वश्रेष्ठ भागवत कथा के द्वारा हुआ। क्या उसका मतलब है? भागवत कथा आपको गोलोक धाम तक पहुँचा सकती है, आपका जो मूल स्वरूप है उसकी सिद्धि करा सकती है, आपको अपना जो कहते हैं उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं उसको। यू विल रीच योर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, जो आपका गोलोक धाम में मूल स्थिति है भगवान की सेवा में, उस स्थिति को भागवत प्राप्त करा सकता है। तो वो सुंदर कथा जो भागवत जी की है वो कुसुम सरोवर किनारे हुई है, इट्स अ वेरी यूनिक भागवत कथा। कृष्णा के जो पत्नियां हैं वो सुन रही हैं, कृष्णा के मित्र जो है वो सुना रहे हैं, मतलब कितना प्रेम से हो गए कथा। वो 30 दिन तक कथा सुनाई उन्होंने बड़े विस्तार में, बड़े प्रेम से, और पत्नियों ने भी बड़े भाव से उसको सुना, इसलिए अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गई और उनका भी उद्धार हो गया। उस समय पर ब्रज में जमुना के अलावा और कोई ब्रजवासी नहीं था, क्योंकि सबको भगवान लेकर तो लोग धाम गए थे। जमुना जी को क्यों रुकाया वहाँ पर? गिरिराज जी भी वहाँ रुकाया, क्योंकि उनके लिए ये सेवा थी कि जब तक कलयुग चलता रहेगा और कलयुग का प्रभाव लोगों पर बढ़ता रहेगा, जब तक घोर कलयुग नहीं शुरू होगा तब तक आपको रहना है। तो घोर कलयुग का मतलब क्या है कि जब जमुना जी पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, जब गिरिराज जी पूर्णतः जमीन में धंस जाएंगे, उसके बाद में घोर कलयुग का आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तभी हम लोग थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा कीर्तन करते हैं, थोड़ा आपको रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है ना, हरे कृष्णा।